पहला सैमुअल अध्याय 10, अध्याय 10 पद 1 से लेकर पद 7 तक में। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल के कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सिवाने पर सेलसा में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदियों को तू ढूंढने गया था वो मिली है, और सुन, तेरा पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां तीन जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के तीन बच्चे और दूसरा तीन रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे दो रोटी देंगे, और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबुवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेगा, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यहां नबी उसकी यात्रा के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है। जब तुम बाहर जाओ, जब तुम राहेल के कब्र पर पहुंचो, वहां कुछ लोग होंगे और वे तुम्हें बताएंगे, जिन गदियों को तुम ढूंढ रहे थे वे मिल गई हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए चिंतित है, वो नहीं जानते कि तुमको क्या हुआ है। जैसे कि तुम थोड़ा और आगे जाओगे, तुम तीन लोगों से मिलोगे जो बेतेल को परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। एक के पास तीन बकरी होगी, दूसरे के पास तीन रोटी और तीसरे के पास दाख मधु का जग होगा। वे तुम्हें कुछ रोटी देंगे, उन्हें ले लेना। तब फिर तुम जैसे ही थोड़ा और आगे जाओगे, तब शहर के पास पहुंचोगे, तो वहां नबियों का एक दल नीचे उतरता हुआ तुम्हें मिलेगा। उनके पास कुछ संगीत के साज होंगे, वे उन्हें बजा रहे होंगे और गाना गा रहे होंगे। तुम जैसे ही उनसे मिलोगे, परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम दूसरे मनुष्य में बदल जाओगे। अतः जैसे अवसर हो वैसे ही करना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। अध्याय 10 पद 8 से लेकर पद 22 तक में। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होमबलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वो उनके बीच में नबुवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे ये देखा कि वो नबियों के बीच में नबुवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को ये क्या हुआ, क्या शौल भी नबियों में का है? वहां एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर ये कहावत चलने लगी, क्या शौल भी नबियों में का है? जब वो नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शौल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, हम तो गधियों को ढूंढने गए थे और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शमूएल के पास गए। शौल के चाचा ने कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शौल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गधियां मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वो उसने उसको न बताई। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना और उससे कहा है हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इसराइली गोत्रियों को समीप ले आया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वो बिन्यामीन के गोत्र के कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शौल के नाम पर निकली और जब वो ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हां सुनो, वो समान के बीच में छिपा हुआ है। अब इसराइलियों को उनका राजा देने का समय आ गया था। मिस्पा में इसराइल की संतान एकत्रित थी। इस महान दिन राजा का राज्याभिषेक था, इसलिए शमूएल भी वहां था। बड़ा समारोह था, वहां सारे गोत्रों के लोग थे और उसने बिन्यामीन के गोत्र को लिया। उसके आगे बिन्यामीनों के परिवार थे। उसने मत्री के परिवार को लिया। तब मत्री कुल से उसने शौल को लिया और उसने कहा, ठीक है तुम राजा हो, वो कहां है? अतः उसने कहा, परमेश्वर यहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा, वो समान के बीच में छिपा हुआ है। अध्याय 10 पद 23 से लेकर पद 27 तक में। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वो लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वो कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था, इसलिए अलग ही दिखाई देता था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुओं को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शौल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, ये जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वो सुनी अनसुनी करके चुप रहा। अब इस आखिरी हिस्से में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आकर्षित और मोहित करती है। पहली, शौल का अभिषेक जहां परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आता है और वो दूसरे मनुष्य में परिवर्तित हो जाता है, एक सही तरह के परिवर्तन का अनुभव। परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और वो नबुवत करने लगा और उसका हृदय परिवर्तित हो गया, अर्थात उसके जीवन में परमेश्वर का काम हुआ। दूसरी बात जो मुझे आकर्षित करती है वो वहां उसके साथ उन लोगों के एक दल का जाना जिनके हृदयों को परमेश्वर ने छुआ था। वो वचन हमेशा मुझे उत्तेजित करता है क्योंकि ये प्रभावी है, इसलिए नहीं कि मैं अंधविश्वासी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं सोचता हूं कि मनुष्यों के उस दल को पा लेना जिसके हृदय परमेश्वर के द्वारा छुए गए हो अत्यधिक उत्साह से पूर्ण होती है। मनुष्यों के हृदय को परमेश्वर छू ले तो देखिए क्या हो जाता है। अब एक लंबे समय के लिए कलीसिया दुर्बल समझी जाती थी, स्त्रियां ज्यादातर परमेश्वर को समर्पित होती थी और अपने पतियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती थी, परंतु ये परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आदमी घर में प्रधान और आत्मिक अगुआ हो। यदि पुरुष ऐसा न करे तो मैं सोचता हूं कि स्त्री को वो स्थान ले लेना चाहिए, परंतु ये परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है। जिस परिवार में पुरुष आत्मिकता में अगुवाई करता है वो घर ऐसा दृढ़ और आशीषित होता है, परंतु कलीसिया में दुर्बलता व्याप्त था। यहां तक कि अगुवे भी दुर्बल लोगों की नाई बात करते और व्यवहार करते थे। वे ऐसे भले और मृदु भाव दिखाते थे कि मसीह विश्वास दुर्बल सा दिखाई देता था। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने आदमी की मर्दानगी को ललकारा है। मैं सोचता हूं कि किसी भी पुरुष की मर्दानगी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने संपूर्ण जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह के पीछे चलने में लगा दे। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा मर्दानगी वाला काम है जो आप कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि ये सामर्थी और प्रभावशाली काम है। जब आपके पास लोगों का एक दल हो जो अपना जीवन सच में यीशु मसीह को समर्पित कर चुके हैं, जिनका हृदय सच में परमेश्वर के द्वारा छुआ गया है, तो उनके पास संसार हिला देने की शक्ति है। पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित मनुष्य यीशु मसीह को समर्पित, क्या ही उत्तेजित शक्ति होती है ये। अतः हमने देखा कि शौल में अनेक गुण थे। एक अच्छे परिवार से आया था जो सुरक्षित था, जहां प्यार था। वो जानता था कि उसके पिता उसे नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। विशाल व्यक्तित्व, आकर्षक रूप, परंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक और जीवन परिवर्तन के सामने ये कुछ भी नहीं था। फिर परमेश्वर ने उसके चारों ओर ऐसे मनुष्यों का दल रखा जिनके हृदयों को परमेश्वर ने उसी समय छुआ था। अब यहां आपके पास परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए शक्ति है। आपके पास वो सारी वस्तुएं हैं जो आपको एक सच्चे आत्मिक विस्फोट के लिए चाहिए। आगे चलकर हम देखेंगे कि शौल कैसे और क्यों भटक गया। जब हम बच्चे थे तब हम पटाखे जलाया करते थे क्योंकि वे बहुत तेज आवाज वाले होते थे, लेकिन हर एक क्षण में आप जानते हैं, आप पटाखे को टिन के डिब्बे में रखिए और उसकी बत्ती में आग लगा दीजिए, तब पीछे हटकर इंतजार कीजिए। कोई धमाका या विस्फोट नहीं, केवल एक फिस। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने सीखा था कि आप फिस पटाखे को लेकर दो भागों में तोड़िए, बारूद को बाहर निकालिए, बारूद को जलाइए। जब ये जलना शुरू करे और आप इसे रोके तो आपके पांव जल जाएंगे, लेकिन आप इसको सच में विस्फोटक बना सकते हैं। लेकिन हम हमेशा इन फिस पटाखों के साथ निराश होते थे। उनमें शक्ति थी, वे टिन के डिब्बे को फोड़ सकते थे। मैं देखता हूं कुछ लोगों के जीवन में वास्तव में शक्ति है, प्रभाव है, सारी आवश्यक वस्तु या मसाले हैं, परंतु फिस। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम फिस ना बने। आज यही आपका सबक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ हो, आपके काम में आशीष दे, वो आपको बुद्धि और मार्गदर्शन दे, ताकि उसका प्यार आपके जीवन में इन कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में भी सच में प्रवाहित हो। परमेश्वर का आत्मा, आत्मा का अभिषेक और उसका सामर्थ आप पर हो। जैसा परमेश्वर चाहता है आप वैसे ही मनुष्य बने, वही काम करें जैसा परमेश्वर आपसे यीशु मसीह की महिमा के लिए करवाना चाहता है।